फांसी जिस जीवन को उत्पन्न करने में हमारे संसार की सारी शक्तियां, हमारे विकास, हमारे विज्ञान, हमारी सभ्यता द्वारा निर्मित सारी क्षमताएं या औजार असमर्थ हैं, उसी जीवन को छीन लेने में, उसी का विनाश करने में, ऐसी भोली हृदयहीनता फांसी। फांसी क्यों? अपराधी को दंड देने के लिए। पर इससे क्या वह सुधर जाएगा? इससे क्या उसके अपराधों का मार्जन हो जाएगा? जो अमिट रेखा उसके हाथों खींची है, वह क्या उसके साथ मिट जाएगी? फांसी दूसरों को शिक्षा देने के लिए, पर यह कैसी शिक्षा है? जीवन के प्रति आदर भाव सिखाने के लिए उसी की घोर हृदयहीन उपेक्षा का प्रदर्शन किया जाए? और इससे भी कभी कोई सीखा है? मुझे तो फांसी की कल्पना सदा मुग्ध ही करती है। उसमें सांप की आंखों सा एक अत्यंत तुषारमय किंतु अमोघ सम्मोहन होता है। एक सम्मोहन, एक नियम, एक निमंत्रण जो कि प्रतिहिंसा के इस यंत्र को भी कवितामय बना देता है, जो कि उस पर बलिदान होते हुए भी अभागे या अतिशय भाग्यशाली को जीवन की एक सिद्धि देता है और उसके असमय अवसान को भी संपूर्ण कर देता है। फांसी, यौवन के ज्वार में समुद्र शोषण, सूर्योदय पर रजनी के उलझे हुए और घनी छायाओं से भरे कुंतल, शारदीय नभ की छटा पर एक भीम कई काला बरसाती बादल। इस विरोध में, इस अचानक खंडन में निहित अपूर्व भैरव कविता ही मैं इसकी सिद्धि है। सिद्धि कैसी? काहे की? मेरी मृत्यु क्या सिद्धि होगी? मेरे जीवन क्या थी? यह विनिका उठती है और गिर जाती है, पर्दे आते हैं और बदल जाते हैं, किंतु यवनिका का प्रतीक आक्षेप, पर्दे का प्रतीक परिवर्तन अपने अवसान में लीन होकर भी नाटक के प्रवाह में एक बूंद डाल जाता है। एक बूंद जो स्वयं कुछ नहीं है, किंतु जिसके बिना उस प्रवाह में गति आ सकती है, जिसके बिना उसका अस्तित्व ही नहीं हो सकता। मैं अपने जीवन का प्रत्यवलोकन कर रहा हूँ, अपने अतीत जीवन को दोबारा जी रहा हूँ। मैं जो सदा आगे ही देखता रहा, अपनी जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर पीछे देख रहा हूँ कि मैं कहाँ से चलकर किधर किधर भूल भटक कर कैसे कैसे विचित्र अनुभव प्राप्त करके यहाँ तक आया हूँ। और तब दिखता हूँ कि मेरी भटकन में भी एक प्रेरणा थी, जिसमें अंतिम विजय का अंकुर था। मेरे अनुभव वैचित्य में भी एक विशेष रस की उपभोक्षा थी जो मेरा निर्देश कर रही थी, और जीवन यात्रा के पथ में जो पहाड़, तराइयां, नदी नाले, झाड़ झंकार आदि पानी और उन सब से मेरे और केवल मेरे संबंध में एक एक के था, जिसका ध्येय था किसी विशेष काल में, विशेष परिस्थिति में, विशेष स्थान पर, विशेष साधनों पर और उपायों से मेरे जीवन का विशेष रूप से समापन, जिससे उससे अपनी सिद्धि, अपनी सफलता और अपनी संपूर्णता प्राप्त हो जाए। अब मैं अधूरा हूँ, पर मुझ में कुछ भी न्यूनता नहीं है, अपूर्ण है, पर मेरी संपूर्णता के लिए कुछ भी जोड़ने का स्थान नहीं है सिवाय इस प्रत्यावलोकन के। शायद जीवन पर के अंतिम पड़ाव का पाथ है यही है, क्योंकि मुझ में इससे और इस मात्र से तृप्ति मिलती है। पैराग्राफ चेंज। सबसे पहले तुम शशि, इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई है कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो, इसलिए कि मेरा होना अनिवार्य रूप से तुम्हारे होने को लेकर है। ठीक वैसे ही जैसे तलवार में धार का होना शान की पूर्व कल्पना करता है, तुम वह शान रही हो जिस पर मेरा जीवन बराबर चढ़ाया जाकर तेज होता रहा है, जिस पर मंज मंज कर मैं कुछ बना हूँ, जो संसार के आगे खड़ा होने में लज्जित नहीं है, लज्जित होने का कोई कारण नहीं जानता। तुम जीवित नहीं हो, मेरे शेखर बनने में मैं ही तुम टूट गई हो, शायद स्वयं शेखर के हाथों ही टूट गई हो। और मैं अपने मन में बार बार यह दोहरा कर कि शशि नहीं है, शशि मर गई है, शशि नहीं है, भी यह समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। अपनी क्षति का कोई अनुमान नहीं लगा सकता, कोई अनुभव नहीं कर पाता। क्यों क्यों तेज तलवार कैसे यह जान पाए कि सांग अब टूट गई है, जब तक कि वह स्वयं भोड़ी ना हो जाए और टूट ना जाए। और मैं भी अभी जीता हूँ, अभी जल रहा हूँ, अभी हूँ। पर तब मैं क्यों कहूँ कि तुम नहीं हो? जो शान तलवार को बनाती है वह तब तक नहीं टूटती जबकि तलवार नहीं टूटती। मुझे मरना है, फांसी पर मरना है, पर अभी मैं जीता हूँ। मैं तुमसे मांगता हूँ कि मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हें याद करूँ। जहाँ तुम हो वहाँ याद शब्द को लाना पूजा को भ्रष्ट करने सा है। फिर भी मैं तुमसे मांगता हूँ कि यह भी अधिकार मुझे दो। तुम मर गई हो, अत्यंत ना कुछ हो गई हो, यदि मुझे अपने आप को समझाने दो और इसके लिए उसे सामने लाने दो जिसे मैं कुछ समझूं। तुम्हारी छायाएं जिन्हें कभी मैं सच समझता था, नहीं वह क्षण नहीं जिसमें मैंने घबरा कर पूछा था कि क्या होता है शशि, और तुमने भराई हुई बेहोश होती हुई आवाज में कहा था सुख शेखर सुख। उस क्षण को ही भर से अधिक सामने आने देने की क्षमता मुझ में नहीं है। मुझे याद आता है कि कुछ ऐसा भी था कि हम सहज भाव से मिलते जुलते थे। स्नेह हम में था, मोह हम में था, लेकिन स्नेह नहीं कि जो कि वे विघ्नों के सहारे बहता है, वह मौन नहीं कि जो पीड़ा की नींव पर ही अपना घर खड़ा करता है। जब मैं जेल से आकर पहले पहल तुम्हें मिला था, तब तुम्हें देखकर एक गहरा आघात मेरे मन पर हुआ था। तभी मैंने कहा था, बाहर आकर मेरा बहुत कुछ खो गया है, भीतर मैं तुम्हें अपने में से एक ही देखता था। अब लगता है कि मुझे तुम दोबारा पहचानना है। और तुम रोई थी, तब तुमने सहसा कहा था मेरा घर देखने ना चलोगे, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी थी, तुम्हारा घर था। मैंने तुम्हारा घर देखा, उन्हें भी देखा जिनके आधार पर वह घर तुम्हारा घर हुआ था, और मुझे लगा कि तुम संतुष्ट बैठी हो। तुम्हारे जीवन के चलने के लिए एक पटरी निश्चित हो गई है और उस पटरी के इधर उधर कहीं कोई नहीं है। तब मेरा संकोच और भी दृढ़ हो गया कि मुझे दोबारा पहचानना है, तुम मेरी परिचित नहीं हो। मैंने कहा, शशि कुछ गाओ। अब मैं नहीं गाती वाती, क्यों अब बहुत बुजुर्ग हो गई हो क्या? तुम हंसी और उस हंसी की ध्वनि के आश्रय ही मुझे एकदम एक क्षण प्राप्त हुआ जो जीवन में कभी-कभी ही आता है। बहुत ही स्पष्ट अचूक दृष्टि से मैंने देखा, मेघाच्छन्न आकाश, प्रकाशहीन सायंकाल, पवन अचंचल, चंचल भी अदृश्य, और उड़ते उड़ते सहसा पंख टूट जाने से विवश गिरता हुआ अकेला ही अकेला एक पक्षी जो गिरता है और फिर भी अपनी उड़ान अपना स्थान पा लेने के लिए छटपटा रहा है, छटपटा रहा है। मैंने एकदम से तुम्हें पहचान लिया। तुम मुझे नहीं हो सका कि मैं वहां बैठा रहूं। मैं विदा मांगकर चल पड़ा। तुम द्वार तक छोड़ने आई, देख लिया मैंने तुम्हारा घर। हाँ देख लिया, बहुत कुछ देख लिया, कहकर मैं जल्दी से बढ़ गया और तुम उस अपने घर की परिधि में खिरी अकेली रही। बंदावीर के समय मैंने बने हुए मकानों के खंडहर और उसके आसपास बने हुए उनसे नए किंतु फिर भी बहुत पुराने मकान, ऐसे एक मकान में शेखर बैठा है। कमरे में वह बैठा है, वह वास्तव में रसद की कोठरी की एक और बनी हुई पुराने ढंग की खिड़की की चौखट है, चौड़ी और बेडोल, प्राचीनता से काला पड़ा हुआ किंतु कामदार। इसी चौखट पर वह बैठा है, हाथ दोनों ओर लटके रहे हैं और सिर दाईं ओर बाहर की ओर झुका हुआ है। कमरे की दीवारों में और खिड़की की चौखट में अनेक गोलियों के निशान हैं। दीवारों में दो चार जगह भीतर से गोलियां चलाने के मोर्चे बने हुए हैं। ये गोलियां के निशान और ये मोर्चे उस मकान के इतिहास का एक परिच्छेद है जिसे अब कोई नहीं पढ़ता। वह भी खिड़की में बैठा इन्हें नहीं देख रहा है। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य है उसका इससे दूर का भी संबंध नहीं है। टूटी हुई दीवारों से घिरा हुआ एक छोटा सा आंगन, उसके एक कोने में छोटी सी बेरी का वृक्ष जिसकी छाया में एक टूटा सा अंधा कुआं, कुएं के पास पुराने ढंग से छोटी छोटी ईंटों का ढेर, कुछ पीले पीले उड़कर आए हुए पीपल के पत्ते, आंगन की दाईं ओर दीवार के बाहर एक पीपल जिसके नीचे एक गाय बंधी है, उससे कुछ दूरी एक छोटे से मंदिर का छत्र और सीरिस के पेड़ की कुछ फुनगियों की झांकी, और यह सब दोपहर की प्रशांत निवरता में। वह बैठा इसी को देख रहा है। शशि के पिता हृदय रोग से बीमार पड़े हैं, इस कारण सारा कुटुंब किसी अनिष्ट की प्रतीक्षा से भरा रहता है। यह काली छाया घर पर मंडराती है और ऐसा जान पड़ता है कि घर के विभिन्न कमरों की निवरताएं आपस में बहुत दबी हुई कानाफूसी किया करती है। इस विचित्रता कांपती हुई निवरता से बचकर वहां या आकर बैठ जाता है और इस दृश्य को देखकर उसमें घर के वायुमंडल की गंध को भुलाने की चेष्टा करता है, क्योंकि वह उस कुटुंब के प्रत्येक व्यक्ति से स्नेह करता है, पर उससे यह उपलम्भपूर्ण सा मौन नहीं जान पड़ता। उस घर की देवी है शशि, उसकी बहन। यह शशि के ही कारण है कि कॉलेज के सजीव और उन्मुक्त वातावरण से भागकर यहाँ आ जाता है, इस छाया में भी सांत्वना पाता है। वह उसकी सगी बहन नहीं है। फिर उस संबंध से उसे यदि कोई अंतर जान पड़ता तो दूरी का नहीं बल्कि और अधिक समित्व का, एक निर्बाध सखा भाव का। वह भाव जैसे प्रातःकालीन शारदीय धूप की तरह है, जिसमें वह उस घर की ही नहीं अपने अंतर की भी छायाओं को सुला लेता है। वह सगी नहीं है, इसलिए शेखर उसे कभी याद नहीं करता, कभी देखता नहीं। अधिकार उसने नहीं पाया, पूजा ही पूजा उसने दी है। वह बैठा वहाँ स्वप्न देखा करता है और शशि स्वयं चित्र की तरह ना आकर उसे आलोकित करने वाले प्रकाश की तरह आती है, विचार ना होकर अनुभूति रहती है। वह अनुभूति कभी एक प्रखर कंपन में व्यक्त हो उठती है। शशि गाती है, उसकी आवाज में अलंकार नहीं है, कलावान की बारीकियां उसकी मनमोहक छानना नहीं है, पर उसमें है एक प्रकम्पई दीप्ति, शरतकाल में सेकी हुई आग की मीठी गरमाई, उसमें है बेला के स्वर सा घनत्व, उसमें है उषा के समय दूर पहाड़ पर बजती हुई बीन की खींची हुई वेदना, उसमें है बरसात की घोर अंधेरी रात में सुनी हुई वंशी की मर्म भेदी आगरा, और इन सब के साथ है यौवन के गहरे और टूटने की सीमा तक आकर ना टूटने वाले स्वर की ललकार सी। और वह गाती है क्या, एक गान जिसने शेखर ने कई बार कई मुखों से सुना और कई बार 1,000 व्यक्तियों के समवेत स्वर में भी सुना है, पर जिसमें उसने वह अर्थ एक अर्धमुखी ज्वाला कभी नहीं पाई। क्या था जो मुझसे जागता था उस गान को सुनकर, प्रेम या व्यथा या युतुपसा या तीनों। जो कुछ भी हो या एक सम्मोहन की तरह छाकर मुझे दिखाता था वृत्व की ओर, रंग प्रांगण के उन्मत्त स्वप्न जिनमें खोलकर मैं अपने को अपनी ही शक्ति की, अपने ही बलिदानों की, अपने ही आग्रणी आत्मविसर्जन की कहानी सुनाने लगा। कहानी जिसका हेतु, जिसकी आंतरिक प्रेरणा शशि ही होती और उससे मेरे भीतर जागती थी एक पवित्रतम वस्तु की चेतना, जिसके लिए मैं जिहाद करने को प्रस्तुत होता, मुझे लवलीन कर लेती थी एक रहस्यमयी भावना। शशि की व्यक्तित्व की या पुकार या अपील थी मेरे मन के एक खंड के लिए, जो कि जीवन की क्रियाशीलता की उफान से छलका पड़ा है, जो विद्रोही है, किंतु मेरे मन का दूसरा खंड है जो कि सृष्टि की सौंदर्य को ही प्रतिबिंबित कर सकता है, जो वास्तव में मेरे मस्तिष्क का हृदय है और इसलिए कवि है। वह जागता था शशि की हंसी से, उस हंसी में कुछ का चौंका देता था, पर साथ ही वाणी की शक्ति को भी छीन लेता था। वह हंसी कविता से भी परे थी, उसे सुनकर चुप ही होना पड़ता था। कल्पना देखती थी नदियों के, जलप्रपातों के, चंद्रोदय के, समुद्र के, व्योम गंगा के दृश्य, और फिर चुपचाप लौट आती थी उसी हंसने को सुनने को। मेघाच्छन्न आकाश, प्रकाशहीन सायंकाल, पवन अचंचल, चंचल भी अदृश्य, और आज भी वह पक्षी भी नहीं है जो उड़ते उड़ते पंख टूट जाने की व्यवस्था गिरता जा रहा था, पर अपना स्थान पाने के लिए छटपटा तो रहा था। एक तापसी का स्वर, एक छोटे से नरक ने मुझे एक पवित्र तपोवन दिखाकर उस विराट वंचना का एक काम भर कर दिया है, और परिस्थिति को और उपयुक्तता को भूलकर किंतु एक दिव्य समावेदन से कहता है, चक्रवाक वेधु के अमांत्र वाष्य सहचर उपस्थिता रंजनी आ रजनी। पता नहीं किस सुदूर देश से यात्रा करते आए हैं हम, हमारा बजार बजरा दिवंतम इश्वजंद अभी श्रीनगर से कुछ एक मील ही आया है, किंतु ऐसा जान पड़ता है कि मेरी इस यात्रा में युग बीत गए हैं। यह यात्रा अनंत काल से चली आई है और अनंत काल तक चली जाएगी। इसकी यात्री नारद की साफ पाए हैं और अभी कहीं रुक नहीं सकते। बजरा जेहसलम की नहर में से होकर एक मानस बल झील में प्रवेश कर रहा है। जेहलम का गंदला पानी पार किया जा चुका है, चिनार वृक्षों की घनी छाया भी बहुत दूर रह गई है। अब तो झील की निर्मलता आकाश की अनभ्रता को प्रतिबिंबित कर रही है, और झील के अंदर में उगती हुई लंबी लंबी घास सूर्य की ज्योति को प्रतिबिंबित करती हुई अनेक रंगों में चमक रही है, कहीं सुनहरी, कहीं लाल, कहीं एक प्रज्वल हरापन लिए हुए, और उनकी उलझन को चीर कर कभी कभी कोई किरण तल पर पड़े किसी पत्थर को चमका देती है। बजरा तीव्र गति से नहीं जा रहा है, वह बह रहा है ऐसा क्षीण प्रवाह में, मानो उसे चलाने वाली शक्ति उसे धकेल कर समाप्त हो गई है और वह उसी के धक्के की पिनक में चला जा रहा हो, अभी रुक ना पाया हो। उसकी अगली नोक मानो नींव से जागकर अपने सामने नाचते हुए किरण जाल को देखकर उसे पकड़ने का अलसाया हुआ हाथ बढ़ा रही हो। और उसके अग्रभाग में दो व्यक्ति बैठे हैं, बालक निकर पहने हुए किंतु सारा शरीर नंगा, उलझे हुए भूरे बाल और हाथों में एक लंबी सी छड़ी लिए जिसके आगे एक कांटा बांधकर लग्गा बनाया गया है। यह बालक झील में से श्वेत कमल तोड़ रहा है, तोड़ तोड़ कर अपने आगे ढेर जमा करता है, पर संतुष्ट नहीं होता। तोड़ता भी है तो अधखिली कलियां ही तोड़ता है, पूरा खिला हुआ ना जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लगता। उससे कुछ ही दूर पर एक लड़की बैठी है, किंतु मनसा वह सैकड़ों हजारों मील दूर है। उसके पास एक अंग्रेज चित्रकार के बनाए हुए कश्मीर के अनेक चित्र पड़े हैं और उसकी गोद में एक किताब कालिदास का रघुवंश पड़ा है, पर वह चित्र भी नहीं देख रही और पुस्तक भी नहीं पढ़ रही है। वह उस बालक की ओर एक शून्य दृष्टि से देख रही है, मुंह से कुछ गुनगुना रही है और मनसा पता नहीं क्या सोच रही है। बालक की आयु है कोई 8-1 वर्ष, बालिका कोई 13 वर्ष की। बालक स्वयं मैं हूं और बालिका मेरी बहन। बजरे में और भी अनेक लोग हैं, किंतु इस दोपहर के संसार में स्नेह की धूप का आनंद लेने वाला कोई और नहीं है, वह अलग है, खोए हुए हैं। और बजरा अपनी धीर गति से उनके स्वप्नों को पीछा करता जा रहा है। बालक फूल तोड़ते तोड़ते थक गया है और अब फूलों का बाहुल्य भी नहीं रहा। कभी कहीं दूर पर एकाध फूल मिल जाता है, अब वे झील के गहराई में आ रहे हैं। बालक उन फूलों की लंबी लंबी नाल को टुकड़ों में चीर कर मालाएं बना रहा है। नाल दो होकर मालाकार हो जाती है और प्रत्येक माला के नीचे एक फूल का लोलक रह जाता है। वह मालाएं बनाता जाता है और जब जब एक तैयार हो जाती है, तब तब दबे पांव अपनी बहन के पास जाकर धीरे से उसके गले में डाल देता है। वह निश्चल बैठी रहती है। प्रत्येक बार एक स्वप्नशील सी मुस्कान मुस्कुरा देती है और फिर खो जाती है। भाई ने उसे फूलों से लाद दिया है, पर उसकी तृप्ति हुई और वह उसे मना नहीं करती। फूल भी समाप्त होने को आए, कुछ एक रह गए जिनकी एकाध पत्ती टूट गई है। बालक सोच रहा है कि यह माला उपयुक्त नहीं है, पर साथ ही उसे जान पड़ता है कि मालाएं थोड़ी रह गई, अभी तो कुछ और लादी जा सकती है। तब वह अप्रतिभ सा होकर अपराधी सा बहन के पास जाकर कहता है, बाकी तो अच्छे नहीं है। उसका असंतोष देखकर बहन हंसती है और कहती है, बहुत है और क्या कुचल दोगे, और फिर खो जाती है। बालक उसके पास बैठ जाता है, पूजा के भाव से उसकी गुनगुनाहट सुनता हुआ, मानो देवी सी उस वरदान दे रही हो। वह शब्द मुझे आज भूले नहीं, उन दिनों मैंने उसका अर्थ नहीं जानता था, आज जानता हूँ। पर उन दिनों जो स्वप्न देखे थे, जो भाव जगाए थे, उसके अर्थ नहीं जान पाया, वे अर्थ से परे हैं। लाइन थी, स्त्राग्य यदि जीवता पहा, हृदय की निहता न हिंती मामू। बहन को गाते सुनते सुनते एकाएक कोई अज्ञात भाव बालक के मन में जागता है, और एकाएक उत्पन्न नहीं हुआ, कई दिनों से धीरे धीरे उसके हृदय में अंकुरित हो रहा है, किंतु उसकी यह अव्यंजनीय संपूर्णता नहीं है। आज ही मालाएं पहनाते समय और गायन सुनते समय उसके मानसिक क्षितिज के ऊपर आई है। एक अत्यंत कोमल स्पर्श से बहन के कोपल को छूकर बालक कहता है, कितनी अच्छी लगती हो तुम। उसकी शब्दावली में सुंदर और असुंदर, अच्छे और बुरे, सत्य और असत्य के लिए अलग-अलग संज्ञाएं नहीं है। वह अबोध बालक है, पर सत्य शिव सुंदरम के तथ्य को भली भांति समझता है, इसलिए अपने हृदय के अप्रस्फुट भाव को व्यक्त करने के लिए यही कह पाता है, कितनी अच्छी लगती हो तुम। और बहन भी उसे समझाती है। वह फिर हंसती है और एक छिन्न छिन्न सी लज्जा से अधिक सुंदर हो उठती है। वह मुंह फेर कर पानी में देखने लगती है। क्या उनमें अपना अलक्ष्य प्रतिबिंब देखने के लिए, मैं नहीं जानता, वह भी शायद ही जानती हो, और वह अब तक अज्ञात परिवर्तन से बदल रही है। मैं अब भी उसे अपने सारे रहस्य कह डालता हूँ, किंतु उसे अब ज्ञात हो रहा है कि उसके अधिकार में एक स्वतंत्र रहस्यगार है, उसका हृदय। पैराग्राफ चेंज। जैसे मोतियों की माला टूट गई हो और बिखरे मोतियों को फिर एक बेतरतीब लड़ी में पिरोया दिया जाए, उसी तरह मेरी स्मृतियों की तरतीब उलझ सी गई है। इस दृश्य के साथ मुझे दिखता है और एक और दृश्य, जिसमें पात्र भी वही है, उपकरण भी वही है, पर जिसकी आंतरिक प्रेरणा बिल्कुल विभिन्न है। वह दृश्य की दृष्टि से बिल्कुल इसके साथ है, किंतु मेरे जीवन के प्रभाव में ऐसा जान पड़ता है कि उसका इससे कोई संबंध ही नहीं, और यदि कोई है भी तो यह है कि दोनों दृश्यों तो अत्यंत विभिन्न भावनाओं के समकालीन विकास के चिन्ह हैं। वही झील, वही बजरा, वही दिन। संध्या हो चुकी है, सब लोग अंदर चले गए हैं, मैं ही अकेला बजरे की छत पर बैठा हूँ। झील पर आकाश के गाढ़े और सम्मिश्रित रंग के प्रकाश पड़कर उसे ऐसा बनाए हैं जैसा प्रकृति का वह निश्चल आँख नींद से अलसाई हो और उसे घेरे हुए बरूनियों की तरह सब और लंबी लंबी घास क्षितिज रेखा को जहाँ तहाँ चीर रही हो। मैं मुग्ध होकर भी इसी घास के श्याम छाया चित्र को देख रहा हूँ। वही काली है, स्वतः सौंदर्य विहीन है किंतु सौंदर्य को घेरे हुए। और इतना ही नहीं, मैं प्रतीक्षा में बैठा हूँ, पूर्व की ओर घास की बुरोनियाँ और भी काली दिख पड़ रही है, क्योंकि उनके ऊपर आकाश में एक चिकना सा सफेद प्रकाश छा रहा है। मैं कल्पना ही में यह देखने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि चंद्रोदय से किस वस्तु में क्या परिवर्तन आ जाएगा, कौन सा आकार दिखने लगेगा। मैं नहीं जानता कि वास्तविकता मेरी कल्पना से कितनी बढ़कर हो सकती है। नीचे बजरे के अंदर कोई गा रहा है, मैं कान देकर सुनता हूँ। दो स्वर एक साथ ही गा रहे हैं, एक मेरी बहन का है और एक हमारी मौसी का। उस गायन के शब्द मुझे याद नहीं है, पर स्वर दोनों मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैं कल्पना करता हूँ कि ये स्वर दो तेज तैराक है जो झील की छोटी छोटी अदृश्य लहरों पर सवार होकर चले जा रहे हैं, क्षितिज की ओर, चंद्रोदय की ओर, चंद्रमा की किरणों से मिलने, क्योंकि यह किरणें उसके बहिन है और ये कुमुदनियों के हार पहनाएंगे। आह, वे किरणें तो यही चली जा रही है, वे झील की काली बरूनियाँ अब क्षितिज की पलक में सुरमे रेखा बना रही है। उसके ऊपर एक बड़ी सी पथराई हुई आंख की भांति चांद निकल आया है। मेरे मन में एक विचित्र भाव उठता है, चांद एक कन्या है और यह पृथ्वी एक काला सौंदर्य उसका आवरण। किंतु चांद इतना सुंदर है कि इस आवरण को उसके ढंग रखने का अधिकार नहीं है, इसलिए चांद ने उसे उतार फेंका और निरावरण होकर क्षितिज के ऊपर आ गया है। और वह सौंदर्य बिखर कर उस परित्यक्त आवरण को भी कितना सुंदर बनाए डालता है। ये भाव उस सुंदर सचमुच इसी रूप में मेरे हृदय में जागे थे। मैं यह निश्चय रूप नहीं कह सकता, किंतु मेरी स्मृति में जो चित्र आया है वह बालक इसी भावना से भरा हुआ खड़ा है। व्यक्त रूप से यदि यह भाव उसके मस्तिष्क में नहीं था तो इसका अंकुर अवश्य वहाँ था। अवश्य ही उस दिन इस बात का अप्रत्यक्ष ज्ञान हो गया था कि सौंदर्य कितना नग्न और नग्नता कितनी सुंदर है। बालक के स्वप्न को चीरती हुई एक आवाज आई, शेखर अब उत्तर आओ। यह भी उसकी बहन की आवाज है। क्या तभी से जब भी मैं किसी अत्यंत सुंदर दृश्य को देखकर एक ऊर्ध्वगामी उन्माद में अपने आप को भूल जाता हूँ, तब एक तीखी आवाज़ सुनकर पुकार कर कहती है, शेखर अब उतर आओ। अंग्रेजी के चार पंक्तियाँ, डेड लॉन्ग डेड लॉन्ग डेड एंड माई हार्ट इज हैंड फुल ऑफ डस्ट एंड द व्हील्स गो ओवर माई हेड एंड माई बोन्स आर शेकन विथ पेन फॉर इंटू ए सेलो ग्रेप दे अ ट्रस्ट Only a yard beneath the street, and the hopes of the horses beat beat. आगे, यूकिलिप्टिस वृक्षों के एक कुछ की आड़ में गुरु नीड़ नाम का वह बंगला अधछिपा खड़ा था, जिस दिन शेखर का दुर्दम भाव से भरकर अपनी ऊपरी छाया हुई शारदा को सह करने में असमर्थ फूलों से लाद कर उसे छोड़ गया था। उस दिन वह इसी बंगले में रहती थी। आज शेखर इतने दिनों के अवकाश के बाद दौड़ा हुआ उस नीड़ की ओर चला जा रहा था और अतीत की स्मृतियों उसके मन में दौड़ी जा रही थी और इस यौवन के आरंभ का ज्वार भी उसके भीतर कहीं उमड़ता आ रहा था।